हमारे एक श्रोता ने हमारे साथ परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयवों से अपेक्षा का एक हिस्सा साझा किया है
जी।
और ये कोई मतलब कोई आम लेख नहीं है। ये मार्च 1984 में पूज्य गुरुदेव ने अपने सबसे समर्पित कार्यकर्ताओं को एक खास निर्देश दिया था।
वो भी उनके सूक्ष्मीकरण के महाप्रयोग से ठीक पहले।
बिल्कुल। तो आज हम इस छोटे से अंश में जो गहरा राज छिपा है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
और ये अंश सच कहूं तो उनके पूरे मिशन के पीछे की जो सोच है उसको समझने की चाबी जैसा है।
सही कहा। इसकी पहली ही लाइन देखिए, एक बहुत बड़ा दावा करती है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है, कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मतलब पूज्य गुरुदेव यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि ये काम उनका है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये उनका नहीं तो फिर किसका है?
बहुत दिलचस्प सवाल है ये। देखिए, यह माध्यम बनने का जो विचार है वो पूज्य गुरुदेव की कार्यशैली का केंद्र था।
अच्छा।
वो खुद को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण की तरह देख रहे थे। प्रेरणा कहीं और से आ रही है।
और इसके बाद जो वो कहते हैं वो तो इस विचार को एक अलग स्तर पर ले जाता है। कहते हैं, मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है।
हाँ,
वाह, ये तो सिर्फ कलम चलाने वाली बात नहीं है, ये तो अपनी पहचान को ही मिटा देने जैसी बात लगती है।
बिल्कुल।
अगर लिखने वाले का हर कण ही लिख रहा है तो फिर लिखने वाला और लिखी जा रही चीज में फर्क ही क्या बचा? ये तो एक तरह से अद्वैत की अवस्था है ना?
आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ समर्पण नहीं है, ये विसर्जन है। मतलब खुद को उस काम में पूरी तरह घोल देना।
पर यहाँ एक विरोधाभास जैसा नहीं लगता?
कैसा विरोधाभास?
एक तरफ गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेरणा दैवीय है और दूसरी तरफ वो अपने मस्तिष्क और हृदय के हर कण के लगने की बात कर रहे हैं। अगर सब ऊपर से ही हो रहा है तो इतने गहरे व्यक्तिगत प्रयास की क्या जरूरत है?
ये विरोधाभास नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी कहे कि पानी मेरा नहीं है, स्रोत तो पहाड़ों में है।
अच्छा।
मेरा काम तो बस अपने किनारों को मजबूत रखना है और बिना रुके बहते रहना है। यहाँ व्यक्तिगत प्रयास उस नदी के किनारों की तरह है। प्रेरणा को धरती पर उतारने के लिए एक मजबूत और समर्पित माध्यम तो चाहिए ना।
वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो शरीर, मन, हृदय का हर कण उस बहाव को संभालने के लिए लग रहा है।
बिल्कुल।
ये दिलचस्प है। यानी मिशन इतना बड़ा है कि वो उसे बनाने वाले पर भी निर्भर नहीं है। और यही बात अगली लाइन में और साफ हो जाती है।
कौन सी?
मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाएं तो भी कार्य रुकेगा नहीं। ये तो किसी भी व्यक्ति या साधन से पूरी तरह आजाद होने की घोषणा है।
हाँ, और यही सोच उस दौर के कई आंदोलनों से इसे अलग करती है। अक्सर मिशन व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाते हैं।
सही बात है।
यहाँ पूज्य गुरुदेव शुरू से ही ये स्थापित कर रहे हैं कि ये विचार व्यक्ति से बड़ा है, ताकि ये उनके बाद भी चलता रहे। वो नींव में ही अमरता का बीज डाल रहे हैं।
और आखिर में वो उस दिव्य सत्ता के बारे में एक और बात कहते हैं। वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। जब पूज्य गुरुदेव दिव्य सत्ता कहते हैं तो क्या इसका इशारा किसी विशेष देवता की ओर है या यह एक निराकार चेतना की बात हो रही है?
देखिए, इस अंश को पढ़कर तो यही लगता है कि ये किसी साकार देवता की नहीं बल्कि एक अदृश्य मार्गदर्शक शक्ति, एक कॉस्मिक चेतना की बात है।
अच्छा।
ये वो प्रेरणा शक्ति है जो हर महान काम के पीछे होती है। हम उसे देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा का सार ये हुआ कि सच्चा समर्पित काम सिर्फ मेहनत करना नहीं है,
नहीं,
बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति एक दैवीय प्रेरणा के लिए सिर्फ एक माध्यम बन जाता है और एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनता है जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और अमर है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं।
जी।
इस अंश में इस बात पर बहुत जोर है कि वो दिव्य शक्ति अदृश्य है और उस पर भरोसा करना ही सब कुछ है। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज का सबूत मांगते हैं, कोई व्यक्ति अपने जीवन और काम में ऐसी एक अदृश्य मार्गदर्शक शक्ति के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है? किसी व्यक्तिगत परियोजना को एक दैवीय मिशन में बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा?